آية نمبر 57 سي. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روک ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کی اس انعام و رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے کئی درجے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. آپ ان سے کہیے، یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا ہے، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دیا ہے. آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یا اللہ تعالیٰ پر تم افترا باندھتے ہو، یعنی تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو. یہ تھی آیت نمبر 57 سے 60. ان کا عنوان ہے خوشیاں مناؤ ہدایت کے دروازے کھلنے پر. کب کھلتا ہے ہدایت کا دروازہ؟ جب بندہ قرآن پاک کو شعوری طور پہ پڑھنے لگتا ہے اور اس کو سمجھنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہاں قرآن پاک کی چار خوبیوں کا تذکرہ کیا: موعظہ، شفا، ہدن اور رحمہ. قرآن پاک موعظہ کب بنتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے. واعظ کہتے ہی ایسی سپیچ کو ہیں جو دل کے اندر اتر جائے. قرآن پاک شفا کب بنتا ہے؟ جب اس کے مطابق اپنے دل کا تزکیہ کیا جائے. اور قرآن پاک ہدایت کب بنتا ہے؟ جب اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنے کی نیت کر لی جائے. اور قرآن پاک رحمت کب ہے؟ ہر اس بندے کے لیے جس نے اس کو پڑھا کہ ہر لفظ پہ 10 نیکیاں. ہر اس بندے کے لیے جس نے اس کو سمجھا کہ اس کے ذہن کے اندر سے سارے ڈپریشن کو دور کر کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو بھر دیتا ہے. اور اسی طرح قرآن پاک ہر حال میں رحمت ہے. انسان ایک نفسیاتی مخلوق ہے، اور نفسیات بنتی ہے تو انسان بنتا ہے، نفسیات بگڑتی ہے تو انسان بگڑنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک سائیکولوجیکلی اس خوبصورت انداز میں انسانوں کے سامنے رکھا کہ ہر انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ میری ہی تو بات ہے، یہ میرا ہی تو معاملہ ہے. کل رات جس پہ سوچ رہی تھی وہ آج صبح کی کلاس میں بات کیوں آ گئی؟ کس نے بتایا بتانے والے کو؟ کسی نے نہیں بتایا. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی ایک خوبی ہے کہ ہر بندے کو ہر دور میں یہ اپنی کتاب لگتی ہے. اور جب تک کوئی کتاب آپ کو اپنی نہ لگے، سمجھیں کہ آپ نے اس کے پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا. آج کا انسان ایک ایسی مادی دنیا میں جیتا ہے کہ جہاں ہر طرف لسٹ، لذت، گلیمر اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کا ایک ایسا شور و غل ہے کہ جو انسان خوشی کو حاصل کرنے کے لیے پاتا ہے، لیکن دیکھا کیا گیا ہے؟ سب کچھ پانے کے باوجود خوشی نہیں ملتی. نرم بستر ہے، نیند نہیں. کھانے کو اچھی چیزیں ہیں لیکن کھا نہیں سکتے. گھر ہیں لیکن گھر والے اس گھر میں خوشی اور چین سے رہ نہیں پاتے. ہاں، ایک چیز ہے جو بندے کو خوش کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی رحمت سے. کیا؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. یہ قرآن، یہ قرآن جو انسان کو خوشی دیتا ہے وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی. یہ کیسی خوشی دیتا ہے کہ انسان کو دنیا میں اپنی جنت دکھنے لگتی ہے. یہ کیسی خوشی ہے جو انسان کو سب سے بے نیاز کر کے ایک رب کا بننے، اور اس رب کا بننے کے بعد اس کی مرضی کا بننے کے ساتھ ساتھ مرتے دم تک اسی پہ قائم رہنے کی خوشی دیتا ہے. کسی سسکتے، ترستے، پریشان انسان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کو یہی دعوت دے سکتے ہیں کہ ایک دفعہ تم اس قرآن کو پڑھ کے دیکھو. میں ایک ساتھی کو جانتی ہوں، وہ کچھ پرابلم میں تھی. ہر ملاقات پہ $100 per hour سائیکٹرسٹ کو دیتی تھی، اور وہ کیا کرتا تھا، 2-3 گھنٹے کے لیے ان کو بلاتا تھا اور اسے کہتا تھا تم سناؤ اپنی باتیں، پھر وہ سناتی رہتی تھی. اب انسانی فطرت کو جانتے ہیں، جب اپنا دکھ سکھ سنا لیتا ہے انسان تو ویسے ہی ہلکا ہو جاتا ہے. پھر وہ 2-4 ادھر ادھر کی بات کر کے، یا جو بھی اس کی کچھ ہوں گی، مجھے زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتا، وہ آ جاتی تھی، لیکن کہتی تھی کہ چند گھنٹے کے بعد دوبارہ میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں. جب اس نے اللہ کے کلام کی مجلس میں آنا شروع کیا، قرآن پڑھتی تھی، تو کہتی تھی مجھے آپ کے پاس آ کے سکون ملتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ دیکھو، آپ آ جاؤ. اور حقیقت ہے کہ وہاں $100 per hour دے کے بھی انسان کو وہ نہ ملا، یہاں آ کے کیوں ملا؟ کیونکہ یہ انسان کی کتاب ہے. ہم نے اس کتاب کو مولوی کی کتاب سمجھا، ہم نے اس کو مردوں کی کتاب سمجھا، ہم نے اس کتاب کو سمجھا کہ یہ برکت کی کتاب ہے، یہ جنوں کی کتاب ہے، یہ جادو ٹونے کو بھگانے کی کتاب ہے. آج اگر ہم انسانیت کو سچی خوشیوں کا پیغام دے سکتے ہیں تو اس قرآن کو عام کرنا ہے. जो दूसरों को खुशी देते हैं ना, वो खुद भी खुश रहते हैं। इसीलिए कुरान पढ़ने वाले बहुत खुश रहते हैं, उनका दिल खिला रहता है। क्यों? कि हम दूसरों को खुशी दे रहे हैं, और वो खुशी को वक्ती एंटरटेनमेंट के नाम पे नहीं, कि आप 3 घंटे तो किसी खुशी की महफिल में रहें और जब उठें तो दिल पे बोझ लेके आए। दुआ कीजिए कि आज की दुखी इंसानियत के पास इस कुरान पाक का पैगाम पहुँच जाए, और वो हमारे जरिए से पहुँच जाए, ताकि अल्लाह हमें भी सच्ची खुशियाँ अता फरमाए। कुछ लोग इतने बदबخت होते हैं कि इतनी प्यारी चीजों को देखने के बावजूद भी अल्लाह की चीजें दूसरों को देने लगते हैं। इन्हीं का तذکرہ अगली आयत में था कि ये लोग अल्लाह की बनाई हुई चीजें, पैदावार, फसलें, खेतियां, जानवर होते रब के हैं, उसको शैतानों के नामों पे लगाने लगते हैं, शैतान के कामों में लगाने लगते हैं। कदीम दौर का शख्स जो था, वो तो अपना माल और अपनी मता देवी और देवताओं के सामने लगाता था। आज का इंसान बेजान चीजों, बेजान मशीनों और ऐसी चीजों पे के जो शैतानी पैगाम को प्रमोट करने वाली होती है, उस पे माल लगाता है। हम सबको सोचना है, हमारे माल का रुख कहाँ है? क्या सच्ची खुशियाँ लोगों को देने वाली तालीम के लिए, या फिर लोगों को शैतानी चीजों की तरफ माइल करने? और लोग दूर के लोग नहीं होते, हमारे अपने ही घर के लोग होते हैं। सिर्फ अगर 1 महीने में खर्च का अंदाजा लगा लिया जाए कि इस महीने में मैंने एंटरटेनमेंट और फन के नाम पे कितना खर्च किया, या अपने खाने के लिए, अपने टेस्ट के लिए, और मैंने लोगों को ये सच्ची खुशियाँ बांटने के लिए कितना खर्च किया, तो इंशाल्लाह ताला हम सबको ये जरूर पता चलेगा कि अल्लाह की निगाहों में हमारा क्या मुकाम है। वमा तकून फी शान वमा तत्लू मिन्हु मिन कुरआन वला तअमलून मिन अमल इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा। और आप किसी हाल में भी हों और इन अहवाल के साथ आप कहीं से भी कुरान पढ़ते हों और जो काम भी करते हों, हमको सबकी खबर रहती है जब तुम इस काम में मशगूल होते हो, और आपके रब से कोई चीज जरा बराबर भी गायब नहीं, न जमीन में और न आसमान में, और कोई चीज इससे छोटी और ना कोई इससे बड़ी, मगर ये सब एक किताबे मुबीन में है। याद रखो, अल्लाह के दोस्तों पर कोई अंदेशा नहीं और न वो गमगीन होते हैं। अल्लज़ीना मनु व कानू यत्तकून, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और बुराइयों से परहेज रखते हैं। इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह ताला की बातों में कुछ फर्क हुआ नहीं करता, ये बड़ी कामयाबी है। और आपको इनकी बातें गम में न डालें, तमाम तर गलबा अल्लाह ही के लिए है, और वो सुनता और जानता है। आयत नंबर 61 से 65। इन आयात के दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक अल्लाह वाले कौन, जिसको अपनी जुबान में हम वलीउल्लाह कहते हैं, और दूसरा टॉपिक है तुम तन्हा नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हक का पैगाम लोगों तक पेश किया तो लोग आपके दुश्मन बन गए। सादिक और अमीन की बात करने वाले काहिन और मजनू और दीवाने के लकब देने लगे। नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लम के दिल में ये घुटन पैदा होने लगी कि क्या बात है, क्या मैं हक पे नहीं हूँ? और एक अच्छा दाई दीन हमेशा लोगों की मुखालफत के या लोगों के एराज के नतीजे में यही सोचता है कि मेरी दावत में कोई कमी है, मेरे अंदाज में कोई बात ठीक नहीं, कोई मेरी ही तरफ से बात है। वो कभी लोगों के शिकवे नहीं करता कि लोग नहीं आते, लोगों को शौक नहीं, लोग पैसा नहीं देते। तो लिहाजा ऐसे तमाम हालात में जब एक बंदा अपनी तरफ से अपने आप को चेक करता रहे, तो ऐसे वक्त में अगर वो सच्चा होता है तो आसमान से फिर अल्लाह ताला की तरफ से तसल्लियां उतरती हैं कि गम ना करो, तुम तन्हा नहीं हो, हमारे रास्ते में निकले हो, हम तुमको बचाएंगे। अल्लाह की तरफ बुलाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इसके लिए इंसान को अपने सिर्फ जुबान से नहीं, जिस्म के एक एक अंग से कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए कि ये चीज लोगों के आमाल के ऊपर चोट पड़ती है, तो लोग दावत देने वाले की जात के अंदर छुपी हुई चीजों को भी उधेड़ के बाहर लाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि इसको मशकूक कर दें, ताकि लोग इसके जरिए से इस पैगाम को ना सुन सकें। ऐसे वक्त में जो बंदा अपना मुहासबा करके अपने आप को दुरुस्त कर ले, वो भी बचेगा। और अगर उसके अंदर कोई कमी कम थी, लोगों ने उसको कमी बना के पेश किया, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को यही कहता है कि तुम गम ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। याद रखिए, हक की एक पहचान हमेशा से रही, आज के लिए नहीं, क्योंकि आज जो बहुत सारी चीजें हम दुनिया में देखते हैं, हमें तो शोरोगुल दिखता है, हर एक पनपता हुआ दिखता है, लेकिन हक की एक बहुत बड़ी पहचान है कि हक बिलाखिर गालिब आता है, उसको गलबा मिलता है। वो कौमे नूह हो, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कितना झुटलाया, कितना किया, आज भी वो हक मौजूद है। आज अबू जहल का कोई गिरोह दिखता नहीं, आज अबू लहब का कोई नाम लेवा नहीं, आज फिरौन की जात से कोई कौम नहीं चलती, नमरूद को आज कोई अपने लिए रोल मॉडल नहीं बनाता। तो बात यह है कि हक को उसके इंजाम के एतबार से देखो। कभी भी किसी किस्म की मुश्किल में घिर जाओ तो इंतजार करो इस बात का कि कल क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि हक के साथ अल्लाह की मदद होती है, और ऐसे लोग जो अल्लाह के रास्ते में डट जाएं, अल्लाह उनको अपने वली कहता है। और यह अल्लाह का लफ्ज़ हमारे कल्चर में बहुत मारूफ है। हमारे ख्याल में वलीउल्लाह के बारे में ये है कि जो लोगों के लिए कोई तावीज़ घंटे का काम करे, जिनके गले में एक मोटी सी तस्बीह डली हो। या वलीउल्लाह का तस्वुर कुछ इस किस्म से दिया जाता है कि जो लोगों को ख्वाबों की ताबीरें बताते हों, जो पानी पे चल सकें, जो फाल निकाल सकें, जो लोगों का चेहरा देख के दिलों का हाल बता दें। तो याद रखिए, अल्लाह ने यहाँ वलीउल्लाहों की कुछ सिफात दी हैं। मैं चाहूंगी कि आप लोग इनको हाईलाइट कीजिए। पहली बात, अल्लज़ीना आमन, ईमान लाने वाले। दूसरी बात, कानू यत्तकून। ये हैं दो खूबियां जो किसी को अल्लाह का वली और अल्लाह का दोस्त बनाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देखकर रब याद आता है। किसी नेकी के काम को करते हुए किसी ऐसे इंसान का तस्वुर आए जिसने आपको उस नेकी की दावत दी, तो उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए और अपने लिए भी एक अच्छी दुआ कर लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला तू हमें भी इस नेकी के तारुफ से लोगों के अंदर मारूफ कर दे। बास लोग शैतान के एजेंट होते हैं, किसी बुराई का नाम ले, फौरन किसी मॉडल का नाम, किसी तसव्वुर का नाम, किसी रोल मॉडल का नाम। लेकिन असल बंदा वो है जो दुनिया में चलता फिरता अल्लाह ताला का तारुफ बन जाए। और ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला दुनिया में खुशखबरियां देते हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया, इनके लिए दुनिया में खुशखबरियां हैं। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा कि हम नेकी का कोई काम इसलिए नहीं करते कि लोग हमारी तारीफ करें, कोई बड़ाई मकसूद नहीं होती, इसके बावजूद लोग हमारी तारीफ करने लगते हैं, तो क्या फिर इस पे हमारी पकड़ होगी? तो आपने फरमाया, नहीं, तिल का आजिलुल बुशरा, ये जल्द मिलने वाली खुशखबरी है। आख अल्लाह ताला मानो में जिस बंदे का तस्करा अच्छा करता है, बिल आखिर फिर दुनिया में भी उसका तस्करा होता है। इसी तरह सच्चे ख्वाबों का आना, ये भी एक बुशरा कहा गया हदीस के अंदर, क्योंकि जब जुबान सच्ची होती है ना, तो ख्वाब भी सच्चे होने लगते हैं। ये अलग बात है कि फिर बाज दफा झूठों के भी ख्वाब सच्चे होते हैं। अगली सूरत जो है इंशाल्लाह सूरह हूद के बाद सूरह यूसुफ में हम देखेंगे कि बहुत सारी बातें ख्वाबों के बारे में हमें मालूम होंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपना वली बना ले और हम ऐसे काम करें कि जो वाकई लोगों को अमल पे माइल करने वाले हों, ना कि लोगों को और खराब काम करने दें। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो लोग दूसरों को वलीउल्लाह कहते हैं, और खास तौर पे कब्रों और दरगाहों पे बैठे हुए लोगों को, जरा सोचिए कि एक किसी ने शेयर भी किया और मैंने एक बुक में भी पढ़ा कि कब्रों पे अमूमन क्या होता है। अमूमन जो चीज तस्वुर में आती है वहाँ क्या है कि कुछ लोग बैठे सर धुनक रहे हैं, कुछ खवातीन है और वो वहाँ खिदमत कर रही है, और वहाँ कुछ म्यूजिक के साथ नाते और नज्मे पढ़ी जा रही है, बाज लोग अफ्यून और भंग और पी पी के वहाँ बैठे होते हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर कोई वाकई सच्चा वलीउल्लाह है, तो क्या वो ये सारी चीजों को बर्दाश्त कर सकता है? एक सच्चा मोमिन तो अपने सामने अपने माहौल में एक गंदगी दे के, एक बुराई दे के बेचैन होता है, जहाँ सरेआम बल्कि जिना तक की कैफियात और ऐसी ऐसी बेकार किस्म की बातें देखी जाए, तो फिर क्या वहां बैठने वाला अल्लाह का वली हो सकता है जो लोगों को उस पे रोक और टोक ना करे? अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। सुन लो, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, वो सब अल्लाह ही का है। और जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे शुरका की इबादत कर रहे हैं, वो किस चीज का इत्तबा कर रहे हैं? महज बेसनद ख्याल की इत्तबा कर रहे हैं और महज अटकलें लगा रहे हैं। वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें आराम करो, और दिन भी इस तौर पर बनाया कि देखने भालने का जरिया है। तहकीक इसमें दलाइल है इन लोगों के लिए जो सुनते हैं। ये थी आयत नंबर 66 से 67। इनका उनवान है कायनात की निशानियां, पैगंबर के बयान करदा हकायक की अमली तस्दीक। ये कायनात, सूरज चांद रात दिन सब कुछ जो कुछ हमारे सामने आता है ना, ये एक इंतहाई खूबसूरत तरीके से चल रहा है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से। आप इसको किसी भी तरह देखे तो ये जरूर बात समझ में आती है कि ये कायनात एक मकसद के तहत बनाई गई है। यही चीज अल्लाह ताला हमें नबी की जुबान से वही के इल्म के जरिए से सिखाते हैं कि तुम इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आए, तुम सिर्फ अटकल के तीर चला के इस दुनिया से ना चले जाओ, बल्कि हकीकत की बुनियाद पे तुम अल्लाह के दीन को अपनाओ। जो कायनात का दीन है वही तुम्हारा दीन होगा। तो लिहाजा कायनात के अंदर जो भी निशानियां में दिखती हैं रात और दिन के आने जाने की, और दूसरी जो है ये असल में कुरान पाक के अंदर बयान करदा इस हकीकत की निशानदेही है कि इस दुनिया के बाद एक दूसरी दुनिया आएगी, और जिस तरह यहाँ सोने के बाद तुम जाग उठते हो, इसी तरह तुमने कब्रों से भी सोने के बाद उठ जाना है। लेकिन जब लोगों की निगाहें अल्लाह से उठ के गैरों पर लगने लगती है, तो वो ऐसी चीजों को सिर्फ मदर नेचर कहने लगते हैं और फिर इससे कोई इबरत नहीं लेते। किया था। उन्होंने कहा, अल्लाह ने तो बेटा बना लिया, वो तो किसी का मुहताज नहीं। इसकी मलकियत है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। तुम्हारे पास इस पर कोई दलील नहीं? क्या अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते? आप कह दीजिए, जो लोग अल्लाह पर झूठ इफ्तरा करते हैं वो कामयाब ना होंगे। मताउं फिर दुनिया सुम्मा इलैना मरजिउहुम, ये दुनिया में थोड़ा सा फायदा है, फिर हमारे पास इनको आना है, फिर हम इनको इनके कुफर के बदले में सख्त अजाब चखा देंगे। ये थी आयत नंबर 68 से 70। इनका उनवान है, फर्जी खुदा मदद करे भी तो कैसे। आज तक अल्लाह के सिवा लोगों ने जितने भी माबूद बनाए वो दो तरह के थे। एक तो वो हैं फरिश्ते, या अल्लाह के नबी और वली और पैगंबर, और इनके बारे में हमें कुरान पाक में पता चलता है कि ये सब अल्लाह के हुक्म के बंधे हुए हैं। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि लोग फरिश्ते की इबादत करें या नबियों की इबादत करें और वो अल्लाह के हुक्म से हटते हुए इन लोगों की मदद कर दें। लिहाजा इनको तो एक साइड पे कर दें। इसके अलावा जितने माबूद हैं वो सब फर्जी माबूद हैं। कोई देवी, किसी का तखय्युल, किसी का बुत, कोई फलां कोई फलां। अब जरा सोचिए कि जो खुदा है ही फर्जी, बिल फर्ज बंदे पे कोई मुश्किल आ भी जाए तो वो कैसे उसकी मदद करेगा? ये तो ऐसे जैसे आपको एज्यूम कर ले कि मेरा एक बेटा है, आपका ना हो बेटा, और आप एज्यूम कर ले मेरा बेटा है और देखना मैं बीमार होंगी तो ये मुझे पानी पिलाएगा। हो जाए बीमार, कौन पिलाएगा? फर्जी बेटा है ही नहीं। जिस चीज का वजूद नहीं तुम उसके मदद मांगते हो। ये तो ऐसे जैसे खाली घर में जाके कोई पुकार लगाता फिरे, फोन लाइन डिसकनेक्टेड हो और खड़ा होके कोई उसको पकड़ के उस पर मैसेज देता जाए। यानी बात समझ में नहीं आती कि एक बंदा फोन को उठाए बगैर अगर वहां शोर मचाता रहे कि घर में नहीं है घर में नहीं है तो बात पहुंचेगी। जो लोग कब्रों पे जाके या बुतों के सामने या ऐसी फर्जी चीजों के सामने खड़े होके उनसे मदद मांगते हैं, क्या उनका ये हाल नहीं है? एक बात याद आ गई किसी की सुनी हुई कि एक शख्स था, एक दीवाना था, तो किसी जगह दीवार से कान लगा के बड़े गौर से सुन रहा था कुछ। काफी देर से एक शख्स ने देखा ऐसे ही कर रहा है, तो उसने उसको पूछा, भाई क्या सुन रहे हो? तो कहने का, तुम भी सुन लो। अच्छा, वो पीछे हटा, उसे कहा तुम सुनो। अब उसने कान लगा दिए। अब लगातार रहा थोड़ी देर बाद, कहने लगा कि मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। कहेगा, पागल, मैं तो सुबह से खड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया तो अभी कैसे सुनाई दे? सोचिए जरा, यानी क्या ये शिर्क ऐसी चीज नहीं है? हम उनको सुनाते हैं जिनके पास कुछ नहीं और उनके सुनने का दावा करते हैं जो असल में है ही नहीं। तो लिहाजा इंसान को अल्लाह ताला ने जो अकल दी है ना, ये बड़ी प्यारी चीज है। इसको अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रखा, इसी की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को हक और बातिल की पहचान दी। लेकिन जब इंसान की अकल के ऊपर तासुब के और बाप दादा के तौर तरीकों के पर्दे पड़ जाते हैं तो फिर इंसान ऐसी चीजों से फायदा नहीं लेता। वत्लु अलैहिम नबअ नूहिन इज़ क़ाल लिक़ौमिही, और इनको पढ़कर सुनाइए नूह अलैहिस्सलाम की खबर, जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुमको मेरा रहना और अहकाम इलाही की नसीहत करना भारी मालूम होता है तो मेरा तो अल्लाह ही पर भरोसा है। तुम अपनी तदबीर बिमा अपने शुरका के पुख्ता कर लो, फिर तुम्हारी तदबीर तुम्हारी घुटन का बायस न होनी चाहिए। फिर मेरे साथ कर गुजरो और मुझको मोहलत न दो। फिर भी अगर तुम एराज ही करते जाओ तो मैंने तुमसे इसका कोई मुआवजा नहीं मांगा। मेरा मुआवजा तो सिर्फ अल्लाह ही के जिम्मे है और मुझको हुक्म किया गया कि मैं मुसलमानों से रहूं। बस वो लोग इनको झुटलाते रहे, बस हमने इनको और जो इनके साथ कश्ती में थे इनकी निजात दी और इनका जानशीन बनाया, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था इनको गर्क कर दिया। सो देखना चाहिए कि कैसा इंजाम हुआ उन लोगों का जो डराए जा चुके थे। ये थी आयत नंबर 71 से 73। इसका उनवान लिखिए, सैलाब के बाद मोमिनीने नूह खलीफा बने। सैलाब आने से पहले पूरी की पूरी कौम नूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले अम्बिया किराम की खलीफा थी। खलीफा से मुराजे के उनके बाद आने वाले जानशीन के मानों में। लेकिन जब तूफान आया तो उसमें से कितने बचे जो मान चुके? यही कयामत के दिन भी होने वाला है। अल्लाह ताला ने यहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात बता के हम सबको ये बात बता दी कि कल कयामत के दिन सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनके दिल में ईमान होगा। अल्लाह ताला ने इतनी लंबी उम्र दी थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, इसके बावजूद भी आप देखिए कि लोग उनसे फायदा ना उठा सके। एक जगह आता है कि किसी ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप सुनाइए कि जिंदगी कैसी गुजरी। आपको पता है कि 1000 साल की उम्र थी इनकी और उसमें से 950 ईयर 950 साल जो थे इन्होंने तबलीग पे लगाए। तो लोगों ने पूछा कि आप बताइए जिंदगी कैसी है, क्या लगा? तो कहने लगे कि ऐसे लगता है कि एक दरवाजे से गुजरा और दूसरे से बाहर आ गया। ये है जिंदगी। इस जिंदगी के मजे मौत की सूरत में या तो बढ़ने वाले हैं या खत्म होने वाले हैं। अल्लाह ताला ने कौम नूह के नाते से हम सबको ये पैगाम दे दिया कि जो वक्त के मुबल्लिग और वक्त के दाइये दीन की बात नहीं मानेगा, फिर दर हकीकत वो अपने जन्नत में जाने के चांसेस को खत्म कर रहा है। हजरत नूह की सीधी सादी बात थी, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि तुम तो हमसे झगड़ रहे हो? हर दौर में यही होता है। जब भी लोग दीन की सच्ची बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये बहस करते हैं, ये मुबाहसे करते हैं, अब इनकी जुबान खुल गई है। लेकिन ऐसे لوگ جب حضرت نوح اور ان کی قوم کے آخری معاملے کو دیکھیں گے تو یہ بات حقیقت کی طرح سمجھ آ جائے گی، یہ اس بات کی حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو صرف وہی بچتے ہیں جو ماننے والے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ ثم بعثنا من بعدہ رسلا، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو قوموں کی طرح بھیجا، پس وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے. اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہریں لگا دیتے ہیں. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے. پھر جب ان کو ہمارے پاس سے واضح دلیل پہنچ چکی تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے. وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس وہ چیز لے کر آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے. یہ تھی آیت نمبر 74 سے 78. اس کے دو عنوان ہیں، پہلا عنوان ہے حد سے گزرنے والے بے حس ہو جاتے ہیں، اور دوسرا عنوان ہے ان کا حق اور ناحق کی بجائے باپ دادا کی تقلید. پہلی بات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خبر دی وہ کیا ہے کہ جب کوئی انسان ایک دفعہ حق کو حق سمجھتے ہوئے ٹھکرا دے، اس جملے پہ غور کیجئے گا، حق کو حق سمجھتے ہوئے ٹھکرانا اور بات ہوتی ہے، حق کو باطل سمجھتے ہوئے ٹھکرانے کی یہ سزا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ انسان تو لا علم تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن جس نے ایک بار حق کو حق سمجھنے کے باوجود اس کو اگر ٹھکرا دیا تو ایسا بندہ ایک عذاب کا شکار ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ حق کی قبولیت کی توفیق چھین لیتا ہے. یہی پھر ان کا ایگو پرابلم بن جاتی ہے کہ انسان کا دل مان جائے لیکن اس کی زبان نہیں مانتی. ایسے لوگ پھر حق کو چاہیں گے بھی لیکن حق کو ماننا نہیں چاہیں گے. یہ اسی شخص کی طرح جو غصے میں ایک دفعہ کہہ چکا ہو کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پھر بعد میں دل بھی چاہے کھانا کھانے کو تو یہ بات ہوتی ہے کہ اب میں کس منہ سے کھانا کھاؤں کہ میں نے تو ماں کو کہہ دیا تھا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ایسی بات کا علاج کیا ہے کہ انسان اللہ سے مدد مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس چیز کی دعا کرتے تھے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. میں نے ایک جگہ ایک کال پڑھا کسی کا کہ اسلام کی طرف آنے کے بعد جو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں اسلام کو وہ شیطان سے زیادہ تباہی پھیلاتے ہیں، اور یہ سچ ہے. گھر کا بھیتی لنکا ڈبوئے والی کیفیت ہوتی ہے کہ جو لوگ حق کے قریب آ جاتے ہیں پھر حق کو نہ مانے تو وہ پھر اپنے نہ ماننے کی کوئی دلیل تو لوگوں کو دیں گے نا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اسے بہت ہی زیادہ شر پھیلتا ہے اور اللہ کی طرف سے پھر وہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی. میں سوچتی ہوں لوگوں نے قرآن پاک سے ہی شرکیہ رسومات کو ایجاد کیا. میں حیران ہوتی ہوں کہ لوگ جب دین کی باتیں کرتے ہیں تو اس وقت وہ کیسی تاویلات کرتے ہیں. ایسے ہی مجھے چند چلتے چلتے بول کسی کے سننے پڑ گئے، تو جو کہنے والے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ایوہ النبی کہا کرو. کیوں؟ پھر اس کے آگے ایک روایت پیش کی جا رہی تھی کہ مومنوں کے گھروں میں اللہ کے نبی کی روح رہتی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے، اب یہ بات کیا وہ بےچارے بری نیت سے کر رہے تھے؟ کبھی بھی نہیں، پورا اخلاص تھا، محبت بھی ہوگی، ہو سکتا ہے آنکھوں میں آنسو بھی ہوں گے، لیکن ان کو یہ بات ایسی سمجھ آئے گی. کیوں؟ کہ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین. حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اللہ کے کلام میں اپنے اضافے کر لے، وہ روایتیں اور کہاوتیں پیش کی جائیں جس کا اصل سورس ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ جمع دے. پھر اگلی چیز ہم نے دیکھی، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بڑی سیدھی سادی تھی، پیچھے ہم کئی بار اس کو دیکھ چکے، لیکن فرعون نے اس کو ایک اپنے خلاف محاذ سمجھا. اس کو لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا آنا ہی صرف اس لیے تھا کہ وہ میری مخالفت کریں، اور ہر باطل پرست کا یہی حال ہوتا ہے، وہ پوری بات میں سے صرف وہ بات پک کر لیتا ہے کہ جو اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کے خلاف تھی، اور بہت ساری اچھی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. اور پھر اس نے ایک اور الزام لگا دیا کہ یہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے. تو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے، اور وہ کیا کہ لوگوں کو وہ پرکھے گا تو حق اور ناحق کی بنیاد پہ، کون حق پہ اور کون ناحق پہ. لیکن وہ لوگ جو باپ دادا کی محبت کو اپنے لیے ایک آڑ بناتے ہوئے اس کو معیار بنا لے، تو وہ لوگوں کے سچے یا جھوٹے ہونے کی دلیل کیا بناتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے آبا میں سے ہے یا ہمارے آبا میں سے نہیں تھا. وہ لوگ جو اپنے آپ کو روایتوں کا اتنا زیادہ مقلد کر لیں پھر وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں پھر دنیا میں حق کی بات کو لوگوں کے نظروں میں مشکوک کر کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تو کوئی نیا دین ہے، کیا ہماری ماں کو نہیں پتا تھا؟ لوگ کیا ہمارے باپ ایسے تھے؟ لوگ جو وہ طریقے کر کے کیا وہ غلط تھے؟ اور اس طرح کی تاویلات اصل میں پھر بندے کے اور ہدایت کے بیچ میں ایک رکاوٹ بن جاتی ہیں. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا मेरे पास तमाम माहिर जादूगरों को हाजिर करो। फिर जब जादूगर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि डालो जो कुछ तुम डालने वाले हो। बस जब उन्होंने डाला तो मूसा ने फरमाया कि जो कुछ तुम लाए हो ये तो जादू है, यकीनी बात है कि अल्लाह इसको भी बरहम दरहम किए देता है, अल्लाह ऐसे फसादियों का काम नहीं बनने देता। वयुहिक्कुल्लाहुल हक्क बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून, और अल्लाह तआला हक को अपने फरमान से साबित करता है और मुजरिमों को ये बात चाहे कितनी ही नागवार लगे। आयत नंबर 79 से 82, इसका उन्वान लिखिए सैलाब के मुकाबले में तिनकों का बंद बांधना अबस है। मूसा अलैहिस्सलाम के हक का मुकाबला जादूगरों के जादू से करवाने की कोशिश जो थी फिरौन की, वो ऐसी ही कोशिश थी कि कहीं से बहुत बड़ा सैलाब आ रहा हो और उसके आगे कोई तिनकों का बंद बांधे, ब्रिज बना दे छोटे छोटे तिनकों का, क्या होगा? वो तिनके खसो खाशाक की तरह उड़ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह वो लोग जो हक बात के खिलाफ लोगों को माइल करना चाहें, उनका भी यही हाल होता है कि उनकी सारी कोशिशें तिनकों की तरह बहने वाली कोशिशें होती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का वो सांप एक सांप नहीं था, वो असल में अल्लाह की एक ताकत थी जो इसलिए जाहिर हुई थी कि हक को हक और बातिल को बातिल कर दे। इसीलिए देखिए कि उसके आते ही जादूगरों की रस्सी रस्सी बन गई और उनकी लकड़ी लकड़ी बन गई। असल बात ये थी कि फिरौन हार चुका था, दलील के मैदान में हार चुका था, लेकिन शिकस्त न मानी। उसको वो बात समझ आ चुकी थी जो फिरौन के जादूगरों को समझ आई, लेकिन वो मान चुके क्योंकि तासुब से पाक थे। और हो सकता है कि इंसान जादू तक के बुरे फेल में मुबतला हो, शिर्क और कुफर में मुबतला हो, लेकिन जब दलील सामने आती है तो एक अच्छा बंदा क्या होता है कि वो फौरन दलील को मान जाए। लेकिन फिरौन की फिरौनियत क्या थी कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा कहने के लिए कुछ और ही बातें कह दी, मजीद इल्जाम पे इल्जाम लगाए, और नतीजा क्या हुआ कि क्या फिरौन की ये कोशिश कामयाब हुई? बिल्कुल नहीं हुई। हक के रास्ते में जब भी कभी रुकावट आती है, ऐसी कोशिशें तिनकों की तरह बह जाती हैं।